शांति। आज का हमारा विषय है तीन रात्रियों में संबंध। भारत में शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, साथ ही हम नवरात्रि भी मनाते हैं। भारत में ही ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी गाई जाती है। इन सबको देखकर मन में एक प्रश्न उठता है, क्या इन तीनों रात्रियों में यानी शिवरात्रि, नवरात्रि और ब्रह्मा का दिन व रात्रि में कोई संबंध है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद आशा दीदी जी। आशा दीदी पिछले 57 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं और वर्तमान समय में ओम शांति रिट्रीट सेंटर पे डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ओम शांति दीदी, आपका स्वागत है। दीदी, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि रात्रि से क्या भावार्थ है?
रात्रि शब्द अंधकार का प्रतीक है। जब आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में हम रात्रि शब्द को देखते हैं तो उसका अर्थ है ज्ञान प्रकाश का न होना, और जब अंधकार होता है तो मनुष्य भटकता भी है, ठोकरे भी खाता है, राह भी दिखाई नहीं देती है और साथ ही साथ लूट मार सब गलत काम रात को ही होते हैं। तो रात्रि दुष्कर्मों का भी परिचायक है। आजकल रात्रि को हम अगर ब्रॉडर सेंस में लें तो दिन दहाड़े ये सब उल्टे काम होने शुरू हो गए हैं। तो हम क्या कहते हैं कि दिन में भी रात है, यानी जहां मनुष्य प्रकाश न होने कारण ठीक समझ से अपने कर्म नहीं कर पा रहा है, तो रात्रि इन बातों का प्रतीक है।
यानी जब हम रात्रि की बात करते हैं तो ये मात्र दिन और रात नहीं, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लेवल क्या है, इट इज अ सिंबल जो ये सिग्निफाई करता है।
इससे तो रात्रि प्रतिदिन होती है, 24 घंटे में आने वाली रात है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक उसमें बात करते हैं तो वह रात्रि 24 घंटे वाली नहीं है, वो विशाल रात्रि है। विशाल रात्रि उसको मैं कहती हूँ कि इस सृष्टि रूपी नाटक में अगर घड़ी को हम देखें तो सत्ययुग और त्रेता वो दिन कहलाता है, जहाँ मूल्यनिष्ठ जीवन है, जहाँ पर निर्विकारिता है, पवित्रता है, सुख है, शांति है, सत्कर्म है, उसको हम कहते हैं दिन का समय। और द्वापर और कलयुग को हम कहते हैं रात्रि का समय, जबकि त्रेता युग के बाद ज्ञान की प्रारब्ध का ह्रास होना शुरू हो जाता है और शनै शनै आत्मा के ऊपर पांच विकारों की कालिमा छानी शुरू हो जाती है। और जब कलयुग आता है जिसको हम कहते हैं घोर रात्रि, और अब तो हम कलयुग के अंतिम चरण पर हैं, तो घोर अंधियारी रात है, जबकि कहीं पर भी वह प्रकाश बिंदु नजर नहीं आता जो जीवन को ऊंचा उठाने के योग्य रह गया हो। तो ऐसी रात जिसमें हम सब एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रहे, मूल्यों का शमन है, नैतिकता का दमन है और ज्ञान एकदम एब्सेंट है, समझ एब्सेंट है, उसको हम रात्रि कहते हैं।
ये तो स्पष्ट है, जब हम वर्तमान समय को देखते हैं, माहौल को देखते हैं और इंसिडेंट्स को देखते हैं, तो ये यकीनन हम एक रात से गुजर रहे हैं। दीदी, जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं, नवरात्रि की बात करते हैं और ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि की बात करते हैं, इसका आध्यात्मिक रूप से रहस्य क्या है?
आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जब सारे विश्व पर अज्ञान अंधकार है, विकारों की छाया है, माया अपनी फुल फोर्स में है, माया धन नहीं, माया पांच विकार, और जब विजडम एब्सेंट है, तब ऐसे अंधकार को समाप्त करने हेतु परमात्मा शिव आकर इस धरा पर अवतरित होते हैं। उनके अवतरण को हम शिव रात्रि कहते हैं, क्योंकि जब वे आते हैं तो उनकी महिमा है, ज्ञान के सागर हैं, सदगति दाता है, पतित पावन है, तो जब उनका आना होता है, सारा संसार विकारों से आच्छादित है, तब परमात्मा ज्ञान देकर हम आत्माओं को पांच विकारों के चंगुल से मुक्त करने का ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान जब हम जीवन में धारण करते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मिक ज्योति जगनी शुरू होती है और वह ज्योति हम दूसरे की भी जगाते हैं, तीसरे की भी जगाते हैं, करते करते ऐसा होता है कि परम ज्योति से अनेक आत्मा रूपी ज्योतियां जग जाती हैं, अंधकार का नाश होता है, जीवन में पवित्रता, शांति, सुख, ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और जब आत्मिक ज्योति जगती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, समझ आती है सत्कर्म कौन से हैं, दुष्कर्म कौन से हैं, सत्य पथ को अपनाते हैं, तब वो रात्रि समाप्त होती है। क्योंकि परमात्मा पिता शिव के धरा पर आकर ज्ञान देने का जो कार्य चलता है, उससे रात्रि खत्म होती है, तो हमने इसको नाम दे दिया शिव रात्रि।
यानी जब हमारी आध्यात्मिक रूप से आत्माएं गिरावट की ओर जाती हैं और अंधकार में होती हैं, तब निराकार परमात्मा शिव आकर हमें ज्ञान का सोजरा दिलाते हैं। किंतु ब्रह्मा का दिन व ब्रह्मा की रात्रि और नवरात्रि से क्या भावार्थ है?
मैं पहले ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि बताती हूँ। परमात्मा ऊपर से बैठ करके तो कोई कार्य नहीं करते, कर भी सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, उनको कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं उसको कैसे कैच करें? तब परमात्मा पिता एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। परमात्मा अजन्मा है, वे जन्म नहीं लेते हैं। अजन्मा का अर्थ है कि शरीर के बंधन में नहीं आते हैं, नस नाड़ी के बंधन में नहीं आते हैं, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं, मात पिता का लालन पालन नहीं लेते हैं, टीचर और गुरु नहीं लेते हैं, परमात्मा के महावाक्य है कि मैं तर काय प्रवेश करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवान जब धरती पर आते हैं तो उनका अवतरण है, वे मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते, परंतु प्रकृति को वश करके आते। तो जिस तन का वो आधार लेते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजा पिता ब्रह्मा। अब परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है, वे तो इन आंखों से दिखाई नहीं देते, वे ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान देते हैं। देखने में साधारण मनुष्य नजर आ रहा है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद ये ब्रह्मा ही ज्ञान दे रहा है, ब्रह्मा ही भगवान है, ब्रह्मा ही सृष्टि का रचयिता है। वास्तविकता ये है कि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता नहीं, आदि देव है, परमात्मा की प्रथम रचना जिसके द्वारा दैवी सृष्टि का आरंभ होता है, जिस रथ के द्वारा परमात्मा अपना कर्तव्य करते हैं वह है ब्रह्मा रथ। ब्रह्मा ही क्यों रखा? क्योंकि ब्रह्म लोक का रहने वाला उस रथ में आता है, ब्रह्मा शुरुआत करने वाला। तो रात्रि जो उनके साथ जोड़ी गई वो शिवरात्रि जैसी ही बात है कि ब्रह्मा तो पूरे 84 के चक्र में आते हैं, सृष्टि के सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग इन चारों युगों से गुजरते हैं, जबकि शिव परमात्मा तो चारों युगों से नहीं गुजरते, वे अजन्मा है, वे जन्म ही नहीं लेते हैं, सृष्टि चक्र में आते ही नहीं है, आते हैं तो एक ही बार आते हैं सृष्टि को पावन बनाने के लिए। तो ब्रह्मा में जब प्रवेश करते हैं उस समय रात्रि का ही समय है, उनके माध्यम से जो ज्ञान दिया गया उसने शमन किया, तो ब्रह्मा की रात्रि कहा गया। ब्रह्मा की रात्रि कही जाती है द्वापर और कलयुग, क्योंकि ब्रह्मा सत्य त्रेता से अगर लें, अभी वर्तमान समय संगम युग है जिसमें ज्ञान हम परमात्मा के द्वारा ले रहे हैं और ब्रह्मा के माध्यम से हम सुन रहे हैं, तो हीरो एक्टर तो ब्रह्मा हो गया ना अभी, तो उस हिसाब से ब्रह्मा की रात्रि हम इसको कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा का दिन रात्रि खत्म होती है, फिर यही आदि देव आदि कृष्ण बनता है, सत्युग का प्रथम महाराज कुमार। तो ब्रह्मा प्रमुख होने कारण से उसको कह दिया हमने ब्रह्मा का दिन, सत्युग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात, जिस समय देवताएं अपने फुल निर्विकारिता अपने सद्गुणों में अपने स्वरूप में है, तब वो ब्रह्मा का दिन कहलाता है। और जब देवताएं वाम मार्गीय बनते हैं तब से ब्रह्मा की रात का आरंभ होता है। वास्तव में संगम युग रात का एंड है, हाँ, इसके साथ ये खत्म होती है रात, और ब्रह्मा के आने पर ये खत्म होती है और नई सतयुगी सृष्टि का आरंभ होता है, उसको हम कहेंगे ब्रह्मा का दिन।
यानी ब्रह्मा का दिन और रात सारे सृष्टि चक्र से संबंधित है, और ये जो हमारा पीरियड होता है ज्ञान का और एक अज्ञान का, एक डिविनिटी का और एक जो हम वर्तमान समय देख रहे हैं, ये इसे सिंबलाइज करता है। लेकिन फिर भी जो मन में हमारे प्रश्न आता है, ये स्पिरिचुअल इनकी सिग्निफिकेंस तो है, लेकिन क्या ये जो तीनों रात्रियां इतना जिनको हम उत्सव के रूप में भारत देश में मनाते हैं, जैसे हमने कहा शिवरात्रि या ब्रह्मा का दिन और रात्रि जो गाया जाता है, और नवरात्रि तो साल में दो बारी मनाते हैं, तो क्या इनका इसी रात्रि से संबंध है? क्योंकि रात्रि हम देखते हैं इट्स अ सिंबलाइजेशन जहां पर अज्ञान है, जहां पर विकार है, तो क्या ये वही रात्रि है और कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है?
मैं नवरात्रि को एक्सप्लेन करती हूँ कि परमात्मा जब धरा पर आते हैं, मैंने पहले बताया वे सर्वशक्तिवान हैं, वे चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आत्माएं, हमारा रिसीविंग सेट तो इतना पावरफुल नहीं है ना, और परमात्मा अगर किसी पशु के तन में आए, तो पशु के तन में आए तो क्या हम उसकी भाषा समझ सकेंगे? नहीं। जो सोच और समझ की शक्ति है वो भी इंसान के पास है, इसलिए परमात्मा को मनुष्य तन ही लेना पड़ता है। अब मनुष्य तन जो लेते हैं एक ब्रह्मा, उसके द्वारा सारा सृष्टि को छू मंतर से तो परिवर्तन नहीं हो जाएगा। अवश्य ब्रह्मा की भुजाओं का गायन है, तो भुजाएं कोई ऐसे सहस्त्र भुजाएं तो कोई नहीं थी, अगर होती तो आज कोई ना कोई तो उसकी निशानी भी होती, लेकिन ये सिंबॉलिक है। ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान परमात्मा शिव देते हैं, उस ज्ञान को जब हम आत्माएं धारण करती हैं, तो हम कहलाती हैं शिव शक्तियां, शिवमयी शक्तियां। ब्रह्मा की भुजाएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, और ये शिव शक्तियां परमात्मा शिव से योग युक्त होकर अपने जीवन में पवित्रता के बल से, योग के बल से, ज्ञान के बल से स्वयं को शक्तिशाली बनाती हैं। शक्ति कोई बाहुबल की बात नहीं है, शक्ति है ज्ञान और समझबूझ की, जिससे हम पांच विकार रूपी असुरों का नाश करते हैं। आप देखेंगे दुर्गा को भी कोई असुर का नाश करते दिखाया, सब देवियों को कोई ना कोई असुर का नाश करते दिखाया। देवियों के पीछे असुर दौड़े हमेशा। वे माताएं बहने जो जीवन में आध्यात्मिक ज्योति जगाकर परमात्मा से योग युक्त होकर जीवन में पवित्रता और योग की शक्ति जमा करती हैं, उस आधार से पांच विकारों का नाश करती हैं, जिनको असुरों के रूप से सिंबॉलिकली दिखाया गया। तो इसलिए जो नवरात्रि है, ब्रह्मा की रात्रि है और शिवरात्रि है, ये तीनों एक ही समय पर होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, शिवरात्रि, ब्रह्मा की रात्रि और नवरात्रि एक ही सर। शिव शक्तियों ने उस अंधकार का, जो कि मूल्य विहीन समाज था, उसका नाश किया। तो वो कोई बाहुबल नहीं है, योग का बल है। अब सोचिए एक नारी और शेर पर सवारी करे, शेर सिंबॉलिक है किस बात का? शेर सिंबॉलिक है हिंसा का, शेर सिंबॉलिक है आसुरीयता का, भय दंभ, ये सब चीजें शेर के साथ है। यानी ऐसी संस्कारों के ऊपर विजयी बनने वाली दुर्गा माँ है, दुर्गुणों का नाश करने वाली, जिसने शेर जैसे असुर को भी अपने वश में किया था योग के बल से। इसलिए शक्तियों को शिवमयी शक्तियां कहा जाता है। और साल में दो बार जो उनका पूजन है वो आप देखेंगे कि ऐसे वक्त पर है जबकि असुर संहारिणी की संज्ञा उनकी चरितार्थ होती है, दशहरे के करीब और उससे पूर्व कहीं मार्च अप्रैल के करीब भी होता है नवरात्रि। इसी बात का प्रतीक है कि नव युग के आरंभ में भी शक्तियों की आवश्यकता, मूल्यों को जीवन में धारण करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण आदि, और जब कलयुग का अंत होता है तब उसके लिए भी इन शक्तियों की जरूरत है। तो शिवरात्रि, ब्रह्मा की रात्रि और ये नवरात्रि, ये तीनों कट्ठी कट्ठी होती परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पतित पावनी ज्ञान गंगाएं शिव मई शक्तियों की सेना लेकर पांच विकारों का नाश कर रावण राज्य का शमन करते हैं और नई दुनिया का आरंभ होता है।
दीदी आपने बहुत सुंदर रीति से बताया कि कैसे निराकार शिव परमात्मा आकर ब्रह्मा का माध्यम लेकर शिव शक्तियों की रचना करते हैं जिससे ये अज्ञानता की रात्रि खत्म हो जाती है और सोजरा आता है। और ये भी स्पष्ट हुआ कि वर्तमान समय हम रात्रि से गुजर रहे हैं, इस कला कलेश की रात से गुजर रहे हैं। अब हमारे मन में ये भी प्रश्न आता है और जो देखते होंगे उनके मन में भी प्रश्न उठता होगा कि हम खुद कैसे उस अवतरित हुए निराकार शिव परमात्मा से मिलन मना सकते हैं।
हम सब मिलन मना सकते हैं, जो हमारे पिता है ना, पिता तो बच्चों के लिए ही होता है ना, लेकिन पिता का परिचय होना तो जरूरी है ना। जिसके साथ मैंने मिलन मनाना है अगर उसका मुझे सही परिचय नहीं होगा तो मैं कैसे मिलन मनाऊं। तो ये जानना जरूरी हो जाता है, जो आज मैं नहीं स्पष्ट कर पाऊंगी, लेकिन इतना अवश्य कहूंगी कि परमात्मा का पूर्ण परिचय, हम तो कभी कह देते हैं कि हम ही परमात्मा के रूप हैं, जिधर देखो वही परमात्मा ही परमात्मा है, तो फिर हमारा मिलन क्यों नहीं होता। मैं ही परमात्मा हूं या आप ही परमात्मा हैं, तो मिलन क्यों नहीं होता, वो अंदर में असंतोष क्यों बना रहता है। उसका यही कारण है कि पूरा परिचय नहीं है। जब परिचय हो तब तो संबंध जुटे, सब काम हम कर लेते हैं, लेकिन परमात्मा को कहो याद करो बुद्धि भटक जाती है, एकाग्र नहीं होती। मेन रीजन ये है। तो इसके लिए हमें परमात्मा का परिचय जानना जरूरी है, स्वयं का भी परिचय जानना जरूरी कि मैं कौन हूं, परमात्मा से मिलन कौन मनाना चाहता है। आत्मा, तो मुझे आत्म स्थिति में स्थित होना होगा और परमात्मा जो है जैसा है उसको वैसा ही समझ करके मुझे उन्हें याद करना होगा। तब वह मिलन जिसको मैं चाहती हूं, जिसको हम लोग अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं योग, योग का अर्थ है मिलन, तब वह योग हम कर सकेंगे और अपने जीवन में उस पिता से उपलब्ध प्राप्तियों को अनुभव कर सकेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने जाना कि ब्रह्मा का दिन और रात्रि, शिवरात्रि और नवरात्रि में एक गहरा संबंध है। यदि हम निराकार शिव परमात्मा से मिलन मनाना चाहते हैं तो पहला हमें स्वयं के आत्मिक रूप को जानना होगा और फिर निराकार परमात्मा से स्नेह युक्त उन्हें याद कर उनसे योग लगाकर हम इस रात्रि से, इस अज्ञानता की रात्रि से सोजरे की ओर जा सकते हैं और यथारथ परमात्मा से मिलन भी मना सकते हैं। ओम शांति।